ओम शांति। सभी ठीक है? एकदम ठीक है। वेरी गुड। तो आज हमारा सौभाग्य है जो रात्रि क्लास लेने का मौका मिला है। तो आज दिन में हम नीचे गए थे दादी को देखने के लिए, और दादी को बताया कि ऊपर वापस जाना है, क्योंकि दादी कहते आप नीचे ही रह जाओ। मैंने बोला नहीं दादी, ऊपर रात्रि क्लास कराना है। अच्छा बल जाओ और टोली लेके जाओ। तो आप सभी के लिए दादी ने खास टोली भी भेजी है और याद प्यार भी भेजा है। देखो वही तो है, इसलिए तो मैंने शुरू से ही बताया ना टोली के नाम। पूरी बॉक्स भर के आई है टोली आज, है ना। ऐसा विचार चल रहा था और दादी जी के साथ एक थोड़ा दो मिनट का चिट चैट भी मिला, और इसमें ये बात निकली कि देखो दो चीजों की ठिकाना चाहिए, मन की भावना की, और दूसरी बुद्धि की फोकस। इन दोनों चीज को आप एक ठिकाना देंगे तो समझो एक प्रकार की आपकी लाइफ में एक स्थिरता आ जाएंगी, स्टेबिलिटी आ जाएंगी। नहीं तो हम जब मन की भावना को कहते हैं तो इंग्लिश में तो हम हार्ट शब्द यूज करेंगे ना, फीलिंग्स ऑफ द हार्ट, फीलिंग्स शब्द यूज करेंगे। तो मन की भावना को संबंध से ठिकाना मिलता है। इसलिए जब भी बाबा ने आज मुरली शुरू की तो फ्रेंड के रूप से चिट चैट किया ना बच्चों के साथ, संबंध में लाने के लिए कि कौन सा संबंध में आपकी कमी है, आप वो बात देखो। क्योंकि जब मन को ऐसा एक ठिकाना नहीं मिला है, मन की भावना को फीलिंग्स नहीं मिली है, तो दिल में राहत नहीं होती है। नहीं, फिर बुद्धि टू मच काम कर लेती है, अकेले महसूस होता है, ओवरथिंक कर लेती है बातों में। तो दिल और मन को ठिकाना देने के लिए संबंध की बहुत जरूरत है। तो इसलिए बहुत देखना होता है कि सर्व संबंध से प्राप्ति हुई है मेरी, फुल प्यार है दिल में। देखो जब भी दिल का फुल प्यार रहता है तो दिल भी बहुत जैसे सॉफ्ट बन जाता है। नहीं, जेंटल सॉफ्ट, और ऑटोमेटिकली जो अंदर की आत्मा की गुण शक्तियां है वो काम करती है। क्योंकि प्यार ऐसी चीज है, सभी को प्यार चाहिए। नहीं, प्यार से ही हम ज्ञान को धारण भी कर सकते हैं, नहीं? हिम्मत भी रख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक बात बाबा ने आज की मुरली में उठाई। फिर दूसरी बात क्या उठाई? सफलता के आधार दो बातें हैं। कौन सी दो बातें? एक है बाप से अटूट प्यार, वो तो संबंध में आ गया, और दूसरा हाँ हर ज्ञान की पॉइंट की अनुभवी मूर्त। और बाबा ने कितनी सारी लिस्ट बताई अथॉरिटीज की, नहीं, कि जब हम अनुभवी बनते हैं, हर एक ज्ञान की पॉइंट की अनुभवी बनते हैं, तो हमारी स्थिति कैसी होती है? कौन सी कैसी स्थिति थी? एक शब्द बाबा ने यूज किया, साक्षी, और फिर अचल डोल स्थिति बन जाती है, एक रस बन जाती है। और फिर इसको ऐसी स्थिति जब बनती है तो समझो आप एक अथॉरिटी बन जाते हैं। और मैंने गिनती किया, छह प्रकार की अथॉरिटी की लिस्ट बाबा ने दी थी। कौन सी लिस्ट सुना? पहली थी वर्ल्ड, हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी आप ही हो। दूसरा आदि मध्य अंत का ज्ञान की अथॉरिटी, माना गीता के ज्ञान की अथॉरिटी। तीसरा, ये श्रेष्ठ धर्म की अथॉरिटी। किसने स्थापन किया है? परमपिता परमात्मा। तो हम डायरेक्ट आदि पिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है, तो श्रेष्ठ धर्म की अथॉरिटी। चौथा, चौथा, सर्वश्रेष्ठ कर्मों की प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी। नहीं, देखो हम सिर्फ बुद्धि योगी नहीं है, कर्म योगी है ना। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कर्मों की प्रैक्टिकल जीवन की अथॉरिटी। पांचवा, प्रारब्ध की अथॉरिटी, श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध की अथॉरिटी। और छठा, भक्तों की अथॉरिटी। नहीं, हम पूज्य बने हैं, पूजनीय बने हैं, तो भक्तों की भी अथॉरिटी है। अभी देखो, इतना बाबा तो सत चित आनंद है, वो तो सत्य ही बताएंगा ना। तो इतनी सारी अथॉरिटी की लिस्ट निकाले, झूठ थोड़ी बताएंगा हमको। ऐसे थोड़ी ऊपर ऊपर से हमको ऐसे मसाज करने के लिए ये बातें बताएंगा। लेकिन आप स्वीकार करते हो कि हाँ, ये अथॉरिटी हम है? सच सच सुनाओ। चलो, एक दो लिस्ट में से तो हम स्वीकार कर लेते हैं, बाकी के लिस्ट अभी तो और भी लिस्ट निकालना है। अभी देखो क्या, बाबा तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है और हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम भी मास्टर अथॉरिटी बन गए ना। लेकिन देखो, अथॉरिटी की जो अथॉरिटी आती है ही अनुभव से। अनुभव आती है जब भी हम हर एक ज्ञान का पॉइंट ना कि समझे, लेकिन उसको यूज भी करें प्रैक्टिकल जीवन में। और ये सारा आधार बुद्धि पे है। डेफिनेटली इसमें योग का तो सब्जेक्ट आता ही है। लेकिन देखो, लास्ट में बाबा ने क्या बताया, जब भी अमेरिका का ग्रुप के साथ बात कर रहे थे बाबा, तो कौन सी बात उठाई थी बाबा ने? झूलते रहो और बच्चे का स्थान कहाँ है? दिल तख्त पर है ना। जब भी हम ज्ञान यूज करते हैं ना, तो हम दिल तख्त का अनुभव करते हैं। देखो, बाबा ने भी आज बताया ना कि क्वालिफिकेशन क्या है दिल तख्त पर रहने की, डबल लाइट। और डबल लाइट बनने की दो बातें चाहिए। कौन सी दो बातें? सच्चाई और शांति। देखो, दिल के ऊपर चढ़ने के लिए सच्चाई चाहिए ना। देखो, कोई भी प्रकार का आदमी होता है, इसका जो भी स्वभाव संस्कार होता है, लेकिन सच बोलेगा तो किसी का दिल जीत लेगा ना। सच के आधार से ही हम दिल पर चढ़ सकते हैं। अभी जब भी हम दिल पर चढ़े हैं, तभी दिल तख्त पर बैठने के लिए शांति चाहिए। बहुत ज्यादा हतफत करेंगे तो तख्त से गिर जाएंगे, नीचे उतरेंगे। तो बहुत ज्यादा दिल तख्त पर फटफट नहीं करना चाहिए, शांति से, धीरज से काम लेकर के बैठना चाहिए। तो ये दोनों बातें आज दादी ने बहुत अच्छी तरह से सुनाई कि हमको सच्चाई और शांति से काम लेनी है, तभी हमको भगवान की प्रोटेक्शन की महसूसता और भगवान का प्यार, वो जैसे अंदर ही रहेगा। कहते हैं ना इंग्लिश में, एक वार्म फीलिंग, एक गरमाइश होती है। चलो, बाहर की ठंडी है, लेकिन प्यार अंदर से एक गरमाइश लाती है ना, अच्छी तरह से। नहीं, कोजीनेस। हाँ अच्छा इंग्लिश शब्द है, कंफर्ट मिलती है हार्ट को, नहीं? तो ये दोनों बातें बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, भारीपन कब आती है? जब ही देह भान की मिट्टी में पांव लगाते हैं। देखो मैंने थोड़ा इस बात पर थोड़ा विचार किया है कि देह भान एक तो मैं और मेरा शब्द से, मैं शब्द तो बहुत बातें में आते हैं, मुझे करना है, मैंने ये किया है। एक बारी क्या हुआ था, एक बड़ा कुवैत का शेख आया था दादी जी को मिलने के लिए, तो हम बीच में ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो ट्रांसलेशन के समय शेख ने दादी को पूछा कि दादी आप बहुत बारी ये शब्द यूज करते हो डोंट थिंक, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं और मेरे अंडर एक पूरी एक टीम है और नेक्स्ट मंथ हम एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल बना रहे हैं और वो सुल्तान के सामने रखना है, तो अभी आप कहते हो डोंट थिंक, तो मैं डोंट थिंक करूंगा तो ये तो पूरा कार्य तो कैसे चलेगा आगे, तो इसका मतलब क्या है डोंट थिंक का मतलब? तो थिंक दादी का वो ये मंत्र है ना, आपने तो बहुत बारी सुना होगा डोंट थिंक। तो फिर दादी कहते माना सोचो नहीं ज्यादा। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो आप जिस कार्य के लिए निमित्त बनते हो, चलो वो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सोच तो देना पड़ता है ना, थोड़ा इसके ऊपर संकल्प तो देना पड़ता है। लेकिन दादी खुद दो संकल्प से न्यारी रहती है, दूर रहती है। एक है मुझे करना है, देखो कुछ कार्य करना है लेकिन आप थोड़ा एडिशन करते हो मुझे करना है, तो आपके मनसा पर एक प्रकार की हैवीनेस प्रेशर डालते हो ना, एक थोड़ा एक ज्यादा अननेसेसरी आप बोझ डालते हो। देखो आपको सारे दिन में बहुत ज्यादा आता है, आप देखो सारे दिन में बहुत बातें करनी होती तो आप लिस्ट बना के कर लो, लेकिन आप ज्यादा सोचे चलो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ये जो मुझे शब्द मैं शब्द आया तो वो मनसा के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है और फिर खुद को एक प्रकार की भारीपन जो आ जाती है ना, तो हम सोच में ज्यादा पड़ जाते हैं और काम अधूरा रह जाता है। देखो साइंस में भी कहते हैं ना कि आप ज्यादा सोच करेंगे ना तो ब्रेन को इतनी डिसर्निंग शक्ति नहीं है कि उसको पता नहीं है कि आपने ये बात किया है या नहीं, तो आप जितना सोच करेंगे ब्रेन को फील होगा कि आपने वो बात कर ली, प्रैक्टिकल में किया नहीं है उसका अनुभव नहीं हुआ है लेकिन ब्रेन में फीलिंग आती है चलो सोचने से मैंने कर लिया है, ये बात होती ना। इसीलिए हमारे अंदर और बाहर में इतना अंतर आ जाता है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना तो हम प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बात में एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि सारी एनर्जी ब्रेन ने सोच में चला गया है। तो ये एक संकल्प दादी जी दूर रहती है इस संकल्प से। दूसरा संकल्प जब ये कार्य पूरा हुआ है, पूरा होने के बाद कौन सा संकल्प आने, मैंने किया, सूक्ष्म आता है ना, मैंने ये किया ना, थोड़ा अपने आप को ऐसे करते हैं ना, थोड़ा अभी फीलिंग रह जाती है, कार्य का इम्प्रेशन रह जाता है ना, ये भी सूक्ष्म आप बैगेज लेकर के चल रहे हैं। दादी ने कितना देखो कितने सालों से सेवा करते आए हैं, ये थोड़ा सा भी संकल्प किया होता मैंने ये किया तो कितना सारा बैगेज लेकर के चलते दादी, इतने तो डबल लाइट नहीं बन सकती नहीं? तो इसलिए इन दोनों संकल्प से हमको दूर रहना है, कार्य करो, व्यवहार संबंध निभाओ, लेकिन मुझे कुछ करना है और मैंने किया तभी भारीपन नहीं आएगा। समझ आई बात? क्योंकि हमको ये मनसा है ना, मन एक बहुत डेलिकेट चीज है, उसको आप थोड़ा भी प्रेशर डालेंगे ना बेचारा मुंझ जाएगा। एक छोटा बच्चा है और बच्चे को फ्रीडम चाहिए, तो उसको फ्री रखना है लेकिन कंट्रोल में भी रखना है, और ये बुद्धि का काम है। देखो एक शब्द आता है देहभान, और इंग्लिश में कहेंगे जो देह की स्मृति है ना, अवेयरनेस, देह की बातें की अवेयरनेस होती है। फिर जब भी हम कार्य और व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो देह अभिमान बन जाता है। और पता है दुनिया में देह अभिमान के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि ये लोग तो यही स्थिति जानते हैं ना, देह अभिमान की। किसी को तो आत्म अभिमानी की स्थिति को तो उसका ज्ञान ही नहीं है। तो हमने एक बारी ऐसे इसका थोड़ा सोच लगाया कि देखो देह अभिमान, पहले तो अभिमान बुद्धि को अटैक करता है, कहते हैं ना एरोगेंस ऑफ द इंटेलेक्ट, ईगो ऑफ द इंटेलेक्ट, पहला तो बुद्धि को। इसलिए खुद को जब अभिमान आता है तो आप खुद को नहीं देख पाते हैं, जैसे एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। तो एक है अभिमान पर चिंतन ले आता है ऑटोमेटिकली, पर दर्शन, पर चिंतन और पर दोष, मींस बाहर का देखना शुरू हो गया, ये फर्स्ट रिजल्ट है अभिमान की। और देखो कई प्रकार के हमारे कार्य में, और जब भी हम खास करके संगठन में रहते हैं, कितनी बातें आती हैं, कितनी सिचुएशंस भी आते हैं। देखो आप दिन भर में देखो कितनी ऐसी सीन्स आती है आपके सामने। जब भी हम हमारी बुद्धि उस सीन में लगाते हैं, समझो वो ही अभिमान शुरू हो गया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बुद्धि चलाते हैं किस बात में, हाँ तो मेरा शुरू, मेरा विचार है इस सिचुएशन पे, मेरा ये विचार है, मेरा संकल्प है, हाँ मेरा ये ख्याल है, ये होना चाहिए। तो क्या है जो हमारे दिन भर में सीन सीनरी होती है, हमको बुद्धि इस बात पे यूज नहीं करनी है, हाँ? हमको बुद्धि क्यों दी गई है, हाँ? बाबा के साथ कंबाइन रहने के लिए। तो हमारा ज्ञान की जो हमारी यूज होती है वो आप देखो, मैं जब ज्ञान यूज करती हूं तो मैं बाबा के नजदीक आ रही हूं, वो संबंध की समीपता महसूस हो रही है, तभी मेरे को पता चलेगा कि ये सही रीति से ज्ञान यूज हो रहा है बुद्धि में। जब भी हमारा ज्ञान यूज होता रहता है लेकिन समीपता का अनुभव नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, बुद्धि का अभिमान कहेंगे ना। तो बुद्धि चलाने वाले बहुत है, तो इसको हमको बहुत देखना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम ज्यादा से ज्यादा बुद्धि चलाते हैं ना, तो संबंध में रिएक्शन आ जाता है। रिएक्शन तो आप समझते हो ना, और देह अभिमान एक स्वाभाविक बन गया है हमारे लिए। कई प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, आप देखो साक्षी होकर के अपने स्वभाव को चेक करो, सूक्ष्म रिएक्शंस कितने आते हैं दिन में। देखो अभी ऐसा टाइम है जो हमको संगठन की शक्ति को बढ़ानी है, नहीं? लेकिन हम हमारे देह अभिमान के वश, जो हम स्वाभाविक बन गया है, हम चलो बाबा की सेवा करते हैं, कार्य निभाते हैं, लेकिन अकेले अकेले हो गए हैं, तो वो संगठन की शक्ति महसूस नहीं होती है इतनी, जितना होनी चाहिए इतनी महसूस नहीं होती है, होती है नहीं? ये देह अभिमान। तो दुनिया में इन्होंने चार प्रकार के देह अभिमान को रिसर्च किया है। मैं भी आपको बताएं कि क्या क्या रिसर्च किया है। लेकिन एक और बात भी थी बताने के लिए, वो भी बुद्धि से निकल गई है, आएंगी तो बताएंगी आपको। चलो अच्छा, एक है, और मैं अभी रिएक्शन शब्द यूज करती हूं क्योंकि ज्यादातर संबंध व्यवहार में सूक्ष्म रिएक्शन होता है। तो एक प्रकार का रिएक्शन, और ये देह अभिमान की निशानी होती है, जैसे कछुआ मिसल क्या करता है, कछुआ पूरा, वो तो शक्ति होती है समेटने की लेकिन पूरा जैसे अपने अंग को अंदर ले लेता है ना, वो सिचुएशन से अपने आप को निकालता है, संबंध से अपने आप को निकालता है। देखो आत्म अभिमानी होते हैं तो अंदर की कंट्रोलिंग पावर होती है, नहीं? अपने अंग पर कंट्रोल होता है, हम खुद जैसे एक प्रकार की कंट्रोल होती है इंद्रियों के ऊपर। लेकिन जब देह भान होता है तो हम बाहर से कट कर लेते हैं, संबंध को कट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, या सिचुएशन को छोड़ के चले जाते हैं, अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव रीति से, क्योंकि हमको बस हमको अकेले छोड़ दो, हमको अकेले ही रहना है, हमको इन बातों में जाना नहीं है। ये एक सूक्ष्म रिएक्शन बना है, हम समझते अच्छी बात है, लेकिन अंदर से एक प्रकार की निराशा होती है ना, वो हेल्पलेस फीलिंग होती है। ये देह अभिमानी की निशानी, बाहर से लगता है कि हमने अवॉइड किया, चलो हम इन बातों में नहीं जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म अंदर से निराशा, हेल्पलेस, नहीं वो मदद ही नहीं मिलती है ना। देह अभिमान स्थिति में तो आपको बाबा की मदद ही नहीं महसूस होती है, और इसमें क्या है, मेरे को अकेले छोड़ दो, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। और ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे संगठन में, वो बहुत बातें भी नहीं करेगा, अपने आप को थोड़ा साइड में रखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इसका दिमाग में क्या चल रहा है, उसका क्या विचार है उसको क्या चाहिए, वो बस अपना आप वो इतना चुप रहेगा, पता भी नहीं चलेगा है या नहीं है। हा? ये क्योंकि उसको वो अंदर नहीं आना है तो वो बाहर ही रहता है, लेकिन बाहर रहते रहते खुद भी फ्रस्ट्रेशन में आता है, परेशान भी शब्द नहीं है, अंदर उसको घुटता रहता है। तो देखो बाहर का रूप एक बनता है लेकिन अंदर का रूप क्या है, वो दूसरा है। तो उसको हम कहते हैं कछुआ रिएक्शन तो कछुआ तो पता है, बाबा भी बताया है, समेटने की भी शक्ति होती है, नहीं आत्माभिमानी स्थिति होती है, तो वो कंट्रोलिंग पावर भी होता है ना इंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि के ऊपर। अच्छा दूसरा होता है कि देखो इंग्लिश में कहेंगे टेडी बेयर, आप सभी टेडी बेयर को तो जानते हो ना, नहीं टेडी बेयर वो जो शॉप में बेचते हैं ना, छोटे छोटे खिलौने जो भालू होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं ना, अलग अलग रंगीन वाले होते हैं। तो ये रिएक्शन होता है कि अंदर से एक प्रकार की परेशान उठती है, सूक्ष्म होती है, कि औरों की परेशानी देख करके वो खुद परेशान हो जाते हैं अंदर से, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते औरों की परेशानी को। ऐसी व्यक्ति चाहता है कि सभी खुश रहे और पूरा अपने आप को बिजी रखता है औरों को खुश करने में, लेकिन खुद स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, सभी को खुश करते करते खुद ही स्ट्रेस महसूस करता है अंदर, टेंशन बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है कि मैं सभी को इतना खुश करने की कोशिश करता हूं लेकिन अंदर से क्या होता है, टेंशन, और क्या है इस रिएक्शन के नीचे है कि सभी मेरे को स्वीकार करे, मैं सभी को पसंद हूं, मींस पीपल प्लीजिंग कहते हैं ना, हा? कि खुश करने की बात अलग होती है, किसको प्लीज करने की बात अलग होती है। देखो किसी को आप खुश करो तो कैसे खुश करेंगे, आपकी स्थिति ऐसी होंगी ना तभी उनको एनर्जी मिलेंगी ना, खुशी एक एनर्जी है नहीं। अब देखो आप किसी के जो कोई खुश व्यक्ति होता है उसके आप संग में जाएंगे तो आपको एक लाइटनेस आएंगी ना, आपका ही वाइब्रेशन मूड भी लिफ्ट हो जाएगा, आपको ही अंदर से वो फीलिंग जागृत, और वो भी थोड़ा सा भी दो शब्द बोलेगा तो आपके अंदर में खुशी पैदा होगी, आपको थोड़ी सी हर्षित माने स्माइल देगा तो भी आपको वो अंदर से आएंगी ना, बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी आप किसी को क्या कहते प्लीज करने के लिए जाते हो ना, किसको प्लीज करूं माना वो कभी भी खुश नहीं होगा। आप जितना भी उसको इसके ऊपर कुछ देंगे बातें करेंगे, पीपल प्लीजिंग से कोई खुश नहीं होता है। दुनिया के अकॉर्डिंग भी नहीं कि वो समझते हैं कि मैं इसको खुश रखूंगा ना, मैंने इसको प्लीज करूंगा तो मैं खुश रहूंगा। इट डिपेंड्स ऑन अदर्स कि इसकी खुशी के आधार से मैं खुश रह सकता हूं, ताकि मैं इसको प्लीज करूं, इसको जो चाहे दे दूं लेकिन अपनी खुशी को साइड में रख दूं। वही तो है, वही तो है। लेकिन देखो मां बच्चे के संबंध में होता है ये नहीं, हमारे काम में भी व्यवहार में भी होता है, किसी को प्लीज कर दो ऊपर ऊपर से नहीं। दादी कभी कभी कि तो काम चलाओ की बात है नहीं, और आप देखो कि किसी को आप प्लीज करने जाएंगे आप जितना भी करो उसके लिए उसकी कीमत नहीं रहेगी नहीं, वो अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, और फिर आप अंदर से क्या हो जाएंगे, मैंने कितना किया फिर भी नहीं। ये टेडी बेयर का रिएक्शन है अंदर से, क्या है पूरा सिचुएशन का स्ट्रेस वो खुद अपने कंधों पर ले लेता है एक रिएक्शन होता है, ये हमको समझने की बात है। तो हम सेवा समझते हैं ना, ऊपर ऊपर से लगता है सेवा सहयोग देते हैं, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है और ही परेशानी बढ़ रही है कि ठीक क्यों नहीं हो रहा है, सभी खुश क्यों नहीं हो रहे, इसको कुछ चीज पसंद क्यों नहीं आती है। तो सूक्ष्म परेशानी अंदर एक रिएक्शन होती है टेडी बेयर की। अभी आप अंदर चेक करो अपने आप को। फिर तीसरा होता है वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो शार्क शब्द यूज करेंगे, शार्क माने सोर, शार्क वो बड़ी मछली आती है ना जिसका बड़ा मुंह होता है वो जो खा जाता है इसको क्या कहेंगे हिंदी में, शार्क को सोर कहेंगे ना इसका हिंदी का, मछली बड़ी मछली है हाँ, वेर मछली नहीं, मगर तो अलग होता है हाँ, शार्क तो वो बड़ी मछली होती है जिसका मुंह इतना बड़ा होता है वो मनुष्य को भी खा जाता है हाँ, तो उसका रिएक्शन कैसा होता है, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, बहुत जोर से तो वो तो बहुत कठोर बनता है नहीं। क्योंकि क्या है हम कभी कभी रिएक्शन में, शार्क रिएक्शन में वो सच चाहता है, मेरे को सच बात बताओ ना, जो सही बात है ऐसी बात है वो ही बताओ ना, लेकिन उसका आवाज का टोन कैसे होता है थोड़ा दोष वाला होता है वो किसी को दोषी बना करके सच निकालता है, ये है ना। तो बाहर रूप से लगेगा कि इसमें तो बहुत शक्ति है, सामना करने की शक्ति है लेकिन अंदर ये एक रिएक्शन है। चलो अच्छा है कि वो सच्चाई के पीछे पड़ता है, लेकिन किस तरीके से सच्चाई के पीछे पड़ता है वो खुद नहीं देख पाता है। नहीं, तो वो खुद अपने आप को राइट समझता है ना, इसीलिए उस राइट समझने में कठोर बन जाता है। देखो आप सच को प्रूव नहीं कर सकते हैं। और डेफिनेटली किसी को दोषी नहीं बनना है सच को निकालने के लिए। तो ये ऐसा रिएक्शन होता है जो बिल्कुल थोड़ा जैसे अग्रेसिव होता है, माना फोर्स वाला, थोड़ा फोर्स से कैसे भी करके हम सच बात निकालेंगे। तो बाहर से लोगों को लगेगा चलो हिम्मतवान है ये है, लेकिन अंदर से ये खुद को ही जैसे क्या है, जिसका रिएक्शन शार्क का रिएक्शन होता है ना, तो सबसे बड़ी बीमारी कौन सी होती है उसको, हार्ट अटैक, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि ज्यादा हार्ट के ऊपर फोर्स बढ़ जाता है ना। और फिर लास्ट में जो इन्होंने बताई वो क्या कहेंगे, लोमड़ी वो फॉक्स को, वो जो चालाकी लोमड़ी कहते हैं ना उसको, हाँ, तो इसकी रिएक्शन क्या होती है कि जब ज्यादा कुछ ऐसा सिचुएशन आता है हमारे सामने जो बहुत इमोशनल हो, इमोशनल वाला बहुत डिस्टर्बिंग सिचुएशन आता है ना, तभी उस समय इमोशन को कट करने के लिए, फीलिंग को कट करने के लिए ज्यादा ये बुद्धि चलाता है, ओवर बुद्धि चलाता है, तो ज्यादा एनालिसिस में चलाएगा कि क्यों हुआ कैसे इसको ठीक करे, तो बहुत कारण निकालेगा सिचुएशन के प्रति। नहीं देखो कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं आप थोड़ा प्यार दे करके ठीक कर लो, किसी को प्यार ही चाहिए, किसी को थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए, कारण नहीं चाहिए, कारण नहीं निकालो। समझाने की बहुत कोशिश नहीं करो क्योंकि वो व्यक्ति चाहता नहीं है ये। तो वो क्या है रिएक्शन कि ज्यादा बुद्धि ओवर यूज होती है, ओवर थिंक होती है सिचुएशन के बारे में, क्योंकि वो सिचुएशन को सीन के तरीके से नहीं देखता है। देखो ये सीन ही है, सीन आई है और जाएंगी, तो हम डिटैच रह सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए सीन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम माना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसीलिए प्रॉब्लम की लेंस से देख करके ज्यादा बुद्धि चलाएगा तो और ही यहां बुद्धि की कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, नहीं, और फिर इसका इसका फिर फिजिकल में रूप में क्या होगा प्रॉब्लम, माइग्रेन। माताजी को सही शब्द, सही बात है, ऐसे लोगों को ज्यादा माइग्रेन होता है क्योंकि ये ओवर चलता है ना ऊपर में, हा? तो इसलिए इन लोगों का ऐसा रिएक्शन भी थोड़ा हम कहते हैं चालाकी भी होती है ना, बहुत ज्यादा, अरे आप थोड़ा कारण नहीं निकालो, शांत रखो, जो है जैसा है बात को एक्सेप्ट करो। हाँ ये जो देखो ये चौथा, ये पूरा सारा सलूशन है क्या, हा? जो भी आज बाबा बता रहे थे साक्षी दृष्टा की स्थिति, और ये है उल्लू की स्थिति। सभी ने उल्लू को देखा है ना, देखो उल्लू की तीन विशेषता होती है। एक तो आप देखो वो ऊपर ही बैठता है, हा? नहीं उल्लू बैट नहीं है, आउल, बैट को कोई और, आउल है, आउल को क्या कहेंगे, उल्लू ही कहते हैं ना आउल को, जो बड़ी आंखें वाला होता है, जो सिर बिल्कुल 360 डिग्री घुमाता है, वो तो उल्लू तो ही है ना, हाँ वो, तो वो उल्लू ऊपर बैठ के सब कुछ देखता है, तो पहले उसकी पोजीशन उपराम की होती है, ये एक उल्लू की विशेषता है। दूसरा क्लैरिटी, माना उसका सिर पूरा 360 डिग्री घूमता है। नहीं सारा सब कुछ इसको, सारे जगह से सब कुछ इसको दिखाई देता है, एक प्रकार की क्लैरिटी बनती है। और तीसरा रात उसको, उसको सब कुछ जागता है, लेकिन रात में सब कुछ देख दिखाई भी देता है उसको, और वो रात में उसको सब कुछ सटल रीति से महसूस भी करता है सब कुछ। हाँ, ये तीन विशेषता होती है उल्लू की। तो अभी हम कलयुग की रात में हैं, नहीं अभी रात ही कहेंगे ना, नहीं तो हमारी परखने की शक्ति कितनी होनी चाहिए, नहीं और स्थिति भी ऊंचा। कभी कभी हम सोचते हैं, देखो हमारी लाइफ में जो भी आपकी कार्मिक स्टोरी है, जो भी आपकी कार्मिक सिचुएशंस है, वो तो है ही, पास्ट की बनी हुई है। अभी इसको आप प्रॉब्लम के रूप में देख करके सॉल्व करेंगे, करना ट्राई करेंगे, वो होगा ही नहीं। इसको सिर्फ एक ही इलाज है, फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टोरी खत्म हो रही है। अभी घर जाना है, घर जाना है माना इस सीन को पूरा करना है, ना कि इस सीन को और बढ़ानी है। और हम सीन को बढ़ाते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, औरों को दोषी बनाते देते हैं, इतना एक सीन को और खुद को परेशान कर लेते हैं। अभी का टाइम है, जो भी हुआ है उसको फुल स्टॉप लगाओ। इसमें क्या है, आठ रत्न इसमें ही नंबर पास विद ऑनर लेते हैं। ये जो फुल स्टॉप लगाने की जो अभ्यास होती है ना, इसीलिए आठ आठ बनते हैं इस प्रैक्टिस के आधार से। मैंने बहुत बारी दादी जी को इस रूप में देखा है। बातें तो आप सोचेंगे कितने आते हैं दादी के सामने, दादियों के सामने, नहीं ऐसे लोग आते हैं जो एनर्जी देंगे दादी को, प्यार भी देंगे, अच्छे समाचार भी आएंगे, लेकिन ऐसे भी लोग आएंगे जो एनर्जी लेंगे बातें सुना करके, कंप्लेंट करके, कभी कभी गुस्सा भी कर लेंगे, लेकिन तुरंत मैंने देखा दादी की विशेषता, जैसे सुनी अनसुनी, जैसे कुछ बात सुनी नहीं है। एक बहन मेरे को बता रही थी, ये बड़ी दादी की बात है, कि वो बड़ी दादी को पैदल लेके, वो दादी की जो कॉटेज है ना बाहर, तो एक दफा दादी को पैदल लेके चल रही थी, तो फिर पैदल के बाद वापस कॉटेज में आ गए। तो जब ही कॉटेज में आए तो एक दूसरी बहन आई अंदर, बहुत डिस्टर्ब हुई थी, थोड़ी गुस्से में थी, कुछ हुआ था, तो दादी के सामने जोर जोर ऐसे बोलने लगी, बहुत सारी बातें दादी को भी, थोड़ा बात आप कुछ करते नहीं हो, ये देखो वो देखो। तो ये बहन इस सीन को देखती रहती, तो वो उस बहन को ही परेशानी हो रही थी कि ये दादी के सामने, इतनी बड़ी दादी के सामने ऐसे बोल रही है, इसको शर्म नहीं आ रही है, इतने जोर जोर से बोल रही है, और दादी भी कुछ कर नहीं रही है, दादी भी जवाब नहीं दे रही है। तो ये बिचारी साक्षी की स्थिति में तो नहीं थी, लेकिन वो परेशान सीन को देख करके परेशान हो रही थी। फिर जब वो बहन थोड़ा तीन चार मिनट के बाद अपना वो दिखाया, रूप दिखाया, गुस्सा दिखाया, फिर बैटरी फ्लैट हुई, फिर दादी ने बस दृष्टि दी और बोला पूरा किया और फिर एक एप्पल लेकर के उसको दे दिया और वो चली गई। तो फिर ये बहन तो हैरान हो गई कि दादी ने ऐसे क्यों किया, कुछ समझाने की कोशिश नहीं की, या इसको कुछ बहलाने की भी कोशिश नहीं, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही एप्पल ले करके वो चली गई। तो फिर दादी को पूछा कि दादी आपने इसको क्यों समझाने की कोशिश नहीं किया, वो जो कह रही थी ठीक भी नहीं बोल रही थी। तो दादी ने जवाब क्या दिया, अरे पगली, दादी थोड़ी सुन रही थी वो क्या बोल रही थी दादी तो अपनी मन को बाबा के साथ रख रही थी, ताकि बाबा को जो शक्ति आत्मा को देनी थी बाबा दे सके। देखो दादियों का ये काम होता है, अपने मन पे इतना अटेंशन रखते हैं कि बाबा के साथ जुड़ी हुई रहनी चाहिए, ताकि जो भी हम सिचुएशन में हैं उसको शक्ति मिले ना। चलो वो अपने प्रॉब्लम लेकर के आए ना,
उस
नहीं, क्योंकि वो दूसरी एनर्जी के प्रभावित है ना, तो रियलाइज कराने की भी कोई इसका कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन उसी समय आत्मा को क्या चाहिए, पावर चाहिए ना, शक्ति चाहिए। और वो शक्ति मिलेगी कहाँ से? जब ही हमारी मन की स्थिरता रहेगी तब दृष्टि द्वारा वृत्ति द्वारा उस आत्मा को शक्ति मिलेगी। ये दादियों का काम है। इसलिए दादी जानकी कभी कहती है ना कि 99% ऑफ द टाइम वो अंदर रहती है, 1% बाहर रहती है। बाहर से तो लगता है बहुत बिजी है हा? लेकिन कुछ सुनती नहीं कुछ देखती नहीं है। वो अंदर का ध्यान पूरा है दादी का, अपने मनसा के ऊपर पूरा ध्यान है। तो ये एक प्रकार की, जब हम समझो हमारे दिन भर में दिनचर्या में हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम कभी इस अटेंशन को छोड़ देते हैं ना, नहीं इनकी बातों में आ जाते हैं, इनकी फीलिंग्स में आ जाते हैं, और फिर हमारा ही मन बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या है, वो मन को उस संबंध की शक्ति नहीं मिलती है ना उस समय। देखो आपको सिचुएशन में क्या सपोर्ट देगा? एक्चुअली ज्ञान तो है, लेकिन जब ऐसी कठिन सिचुएशन आती है तो आपको संबंध का सपोर्ट देता है। नहीं देखो, परिवार का जो संबंध होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन होता है तो परिवार का सपोर्ट मिलता है ना, उससे फिर अंदर से आत्मा से शक्ति जागृत होती है ना कि मैं ये इसका सामना कर सकता हूं। फिर ज्ञान यूज करने की भी शक्ति होती है ना। तो हम जब मन के ऊपर ध्यान रखेंगे ऐसा दिन भर में कि जो भी मैं कार्य कर रही हूं मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बारी क्या हुआ था, लंदन में हमको कई जगह पर जाना होता है लेक्चर करने के लिए, तो एक दफा एक हॉल में एक लेक्चर रखा था। तो एक भाई जो रेगुलर आता है लेकिन उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी अनस्टेबल है, मेंटली अनस्टेबल है कहेंगे, तो वो जब भी आता था टॉक में तो आगे ही इसकी कुर्सी फिक्स थी आगे। तो मैंने जब लेक्चर पूरा किया तो फिर प्रश्न उत्तर का टाइम आया, तो सभी को पूछा प्रश्न है, तो फिर उसने हाथ उठाया कि हाँ बहन जी मुझे कुछ कहना है। मैंने बोला हाँ बोलिए। देख अच्छा, आपके लेक्चर में ऐसे शब्द थे जो ठीक नहीं थे, उसका मैं करेक्शन करना चाहता हूं, मैंने लिस्ट बनाई है। मैंने सोचा था वो लेक्चर इतना ध्यान से लिख रहा होगा लेकिन जो शब्द ठीक नहीं थे वो इसकी लिस्ट बनाई। तो पूरा पूरा लिस्ट मेरे को बता रहे थे, ये शब्द यूज किया ये ठीक नहीं था, इसके बदले ये शब्द यूज करना चाहिए, ये शब्द यूज किया ये ठीक नहीं था। तो मेरे को लगा इसके पीछे कुछ दिमाग ठीक नहीं है। एक मिनट वो बोलता रहा, मैंने फिर वो दादी को आह्वान किया उस समय, क्योंकि मेरे को वो बात याद आई कि मन को स्थिर रखना है। तो एक मिनट के लिए वो बोलता रहा, मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आई। दो मिनट से फिर भी मेरे को फीलिंग नहीं है। तीसरे मिनट में थोड़ा कुछ फीलिंग शुरू हुआ और उसी समय मैंने सोचा बाबा आओ, इसको जो देना है अब दे दो, इसको खुश कर लो। और जैसे मैंने बाबा शब्द ही अंदर मन में उच्चारण किया उसी समय उसने मिड सेंटेंस बोलना बंद कर दिया। मैं तो देखने लगी और फिर उसने उसी समय, जैसे माइंड चेंज जल्दी हो जाता है ना, अच्छा मैं यहां ही रोक लेता हूं बस इतना ही ठीक है, ऐसे बोल करके चुप हो गया। तो फिर उसने मेरे को फिर प्रश्न पूछा, आप कुछ बोलेंगे क्या? मैंने बोला थैंक यू भाई, आपने इतना मेहनत से हमारा करेक्शन किया, हम आगे के लिए इसका ध्यान रखेंगे। और क्या बोलूं, बेचारा इतना कोशिश किया पूरे शब्दों का मीनिंग निकाल करके दूसरे शब्दों मेरे को देने के। मैंने बोला थैंक यू, बस बात समाप्त। और ज्यादा बुद्धि चलाने की बात ही नहीं है, क्यों इसने बोला ऐसे है? देखो ये बुद्धि चलती है ना सिचुएशन में। तो तुम्हारा काम क्या है, स्पेशली अभी के समय अनुसार जब भी प्रकृति की बहुत हलचल हो रही है। अब देखो सारे विश्व भर में ब्रेकडाउन ही ब्रेकडाउन इकोनॉमी की, हम अभी ग्रीस होकर के आए और वहां पर हर एक फैमिली को दो दो या तीन घर होते हैं, हर एक परिवार को दो तीन घर होते हैं। जैसे इंडिया में कभी को वो जमीन की वो मोह होता है ना, हम जमीन लेवे घर लेवे, ऐसे वहां भी होता है। लेकिन अभी वो ईट भी नहीं खा सकते हैं, जमीन की रेती भी नहीं खा सकते हैं, बेच भी नहीं सकते हैं, कोई लेने के तैयार भी नहीं है। तो जो भी है आपके हाथ में उसको सफल करो, अभी सफल करो, क्योंकि अंत में कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। जो भी आप अब सफल करेंगे आपके अकाउंट में जाएंगे भविष्य के लिए। ठीक है, चलो यहीं ओम शांति कर लेते हैं और फिर योग के बाद सभी को दादी की तरफ से तोली भी मिलेंगी।